శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ జయ శ్రీ రాధే. శ్యామ్ ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. తో ఆప్ సబ్కా శ్రీ ఉచ్చ గ్రామ్ మే ఊంచా గావ్ మే స్వాగత్ హై. ये ललिता देवी का जन्म स्थान और घर भी है. बरसाना यहाँ से उस दिशा में, और बरसाना एक कमल की तरह है, पूरा ब्रज ही कमल की तरह है, उसमें अंदर बहुत अनेक कमल हैं. तो उस कमल के मध्य स्थान में श्री बरसाना यानी राधा रानी का धाम है. उसके आठों ओर जो प्रमुख आठ पंखुड़ियाँ हैं वो हर एक सखी का गांव है. और ये जो गांव है इसका नाम उच्च ग्राम है, और ये भगवान की और राधा रानी की सबसे प्रिय सखी जो है ललिता सखी, उसका गांव है. उसके आगे आंजनोक है, वो विशाखा देवी का गांव है. उसके आगे करेला है, हाँ करहपुर कहते हैं उसको, करहला, वो चंपकलता देवी का गांव है. उसके आगे जहां हम बरसाने, आप लोग गए होंगे बरसाने की, जब हम नीचे उतरते हैं मान मंदिर से, तो वो चिकसोली गांव है, उसका नाम है चिकित्सपुर, वो चित्रा सखी का गांव है. उसके आगे 2 किलोमीटर जाएंगे तो डबरारो नाम का गांव है, यानी कि डबारो गांव, वो रंग देवी का गाँव है. फिर इस तरफ आएंगे तो कमई है, वो इंदुलेखा जी का गाँव है. के आगे जाएंगे तो सुनेरा है, स्वर्णपुर, वो सुदेवी का गांव है. इस प्रकार से 8 सखियां राधा रानी के आसपास ही विराजती हैं. इनका परिवार का थोड़ा परिचय आपको देना जरूरी है. कंज भानु इनके पर बाबा थे सब लोगों के. फिर उनके पुत्र का नाम है मही भानु. मही भानु का विवाह जो है वो सुखदा देवी से हुआ, और सुखदा देवी को और मही भानु जी को 9 पुत्र हुए. उसमें से 4 जो है वो वृषभानु महाराज से बड़े हैं, और 4 वृषभानु महाराज से छोटे हैं, और वृषभानु महाराज बीच में हैं, तो टोटल 9 पुत्र हैं. सबसे बड़े जो हैं महाभानु, उनका नाम अशोक गोप भी है, अशोक महागोप कहते हैं उनको. एक नाम महाभानु भी है. उनकी पत्नी का नाम 2 है, एक है चंपा देवी और एक है शारदा देवी, और इन दोनों के पुत्री का नाम है ललिता देवी, और गांव का नाम है उच्च ग्राम. दूसरे भाई जो है उनका नाम है सत्य भानु. इनकी पत्नी का नाम है नवजौवनी. इनकी कन्या का नाम है विशाखा देवी, और इनका गांव है आंजनोक, अंजनपुर. तीसरे है गुणभानुजी. गुणभानुजी की पत्नी का नाम है समिता जी, और इनके कन्या का नाम है चंपकलता, और इनका गांव कौन सा है, करहपुर, करहला. उसके बाद धर्म भानु, उनकी पत्नी का नाम सुभगा देवी है, और उनके कन्या का नाम है चित्रा सखी, चित्रलेखा देवी. उनका गांव है चिकसोली यानी चिकित्सपुर, उसके बाद हमारे वृषभानु महाराज आते हैं। और वृषभानु महाराज का विवाह कीर्तिदास से होता है। ये कीर्तिदा जो है वो इंदुसेन और मुखारा देवी की कन्या है, जिनका गांव राधाकुंड के पास है, मुखारा, मुखाराई कहते हैं उसको, मुखाराई। वो मुखाराई में राधा रानी का ननिहाल है। कीर्तिदा देवी के भाई बहन भी है, भद्रकीर्ति, महाकीर्ति, चंद्रकीर्ति और कीर्तिमती नाम की उनकी मौसी भी हैं। तो कीर्तिदा देवी का विवाह वृषभानु से हुआ और इनको 3 संतान प्राप्त हुए। कौन से? एक तो राधा रानी है, बड़े भाई श्रीदामा और छोटी बहन अनंग मंजरी। ये अनंग मंजरी जो है वो बलराम जी का अवतार है। बलराम जी जो 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं, उसमें से श्रृंगार रस की सेवा जो है, माधुरी रस की सेवा, वो अनंग मंजरी के रूप में उनकी माधुरी सेवा करते हैं। उसके बाद 4 छोटे भाइयों का वर्णन आता है। एक है रुचि भानु प्रभु, रुचि भानु महाराज, और उनका पत्नी का नाम है भामा देवी। उनकी कन्या का नाम है तुंग विद्या। तुंग विद्या का गांव कौन सा है? कमई, कामनावन। ये मैं क्यों बता रहा हूं सब आपको, आपको शायद याद नहीं रहेगा, लेकिन ये सुनना भी इतना पवित्र कार्य है, सो प्यूरिफाइंग टू द हार्ट। इनके नाम, इनके गांव के नाम, के रिश्तेदारों के नाम, सब हमारे हृदय के लिए शुद्धिकारी है। तो धर्म भानु के बाद में वृषभानु, उनके बाद में रुचि भानु, उनके पत्नी का नाम भामा देवी, तुंग विद्या उनकी कन्या का नाम कमई कामनावन। उसके बाद है वर भानु, वर भानु की पत्नी का नाम है रमा देवी और उनके कन्या का नाम है इंदुलेखा, और इंदुलेखा का गांव का नाम है राकोली लोकल, और वैसे नाम है रंकपूर वन इंदुलेखा। उसके बाद है सुभानु महाराज और मालिका देवी, उनके कन्या का नाम है रंग देवी। और क्या बताया मैंने गांव का नाम? डबरारो या डबारो, उसका शब्द का अर्थ है भाव विभोर हो जाना, जहां पर कृष्ण भगवान राधा रानी बहुत भाव विभोर हो गए थे। ये डबारा भाव और भी एक चीज के लिए फेमस है, वहां पर रत्न कुंड है। राधा रानी ने कृष्ण के द्वारा भेजे गए मोतियों की खेती की थी और मोतियों की जगह पर रत्न ग्वाले थे, रत्न की खेती की थी। और आखिरी भाई है रति भानु और उनके पत्नी का नाम है बुद्धिमती और उनकी कन्या का नाम अभी कौन बची है? सुदेवी। सुदेवी का वन जो है वो उसका नाम है सुनहरा और वैसे नाम संस्कृत में स्वर्णवन और लोकल नाम है सुनहरा। तो इस तरह से ये सुंदर इनका परिवार है। हर एक, ऐसे कहते हैं कि हर एक भाई की एक कन्या है और वो हर एक कन्या जो है राधा रानी के अष्ट सखी में सम्मिलित है। तो दे ऑल सिस्टर्स, फर्स्ट कजिन्स। इसमें ललिता देवी जो है उनका और एक नाम है, किसी को मालूम है? ये सब पूछने का कारण क्या है कि आप थोड़ा सोचेंगे, फिर हम बताएंगे तो आपको याद रहेगा, है ना। ललिता देवी का और एक नाम है अनुराधा, क्योंकि वो हमेशा राधा रानी का अनुगमन करती रहती है। इनका जन्म जो है वो राधा रानी के जन्म के 2 दिन पहले हुआ था। अभी उनके आपको वो भी बताता हूँ, जन्म का शेड्यूल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बात नहीं, राधा रानी के पहले वृषभानु, इसमें ललिता देवी का जन्म हुआ था। ललिता षष्ठी भाद्रपद शुक्ला षष्ठी के दिन ललिता का दिन जन्म हुआ था, उसको ललिता षष्ठी कहते हैं। और उसके बाद 2 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा रानी का जन्म जो है वो और 2 सखियों ने भी शेयर किया हुआ है। उनका नाम क्या है? विशाखा देवी और चंपकलता देवी। इन दोनों का जन्म भी राधाष्टमी के दिन हुआ था। और उसके बाद में एकादशी के दिन ललिता चिकित्सापुर यानी चित्रा सखी का जन्म हुआ था, और दशमी के दिन इंदुलेखा का जन्म हुआ था, और पूर्णिमा के दिन रंगदेवी सुदेवी का एक साथ में जन्म हुआ था। तो ये एक 15 दिन के बीच में सब लोगों का जन्म हुआ है। तो ललिता देवी जो है वो बड़े तेज स्वभाव की है। राधा रानी स्वभाव कैसा है, एकदम भोला भोला भाला, सिंपल, बहुत कोमल, बहुत दयालु। लेकिन ललिता का स्वभाव थोड़ा सा तेज और प्रखर है, स्ट्रांग एंड कॉन्ट्ररी, क्योंकि उसका भाव ही ऐसा है। राधा रानी की बड़ी बहन होने के नाते राधा रानी उसको अपना गुरु भी मानती है और राधा रानी उसकी सलाह भी लेती है हमेशा। राधा रानी उसकी शरण में भी रहती है सुरक्षा के लिए, और जब भी कृष्ण की तरफ से कोई आतंक होता है, हरे कृष्ण, तो वो राधा रानी की ढाल बन के खड़ी हो जाती है। राधा रानी जब उनकी ढाल ग्रहण करती है तो कृष्ण भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, उनको भी परास्त होना पड़ता है। तो इसलिए ललिता देवी की वो सेवा है, वो ऐसे नहीं कि वो जानबूझ के उनका प्रखर स्वभाव है। उनका रंग जो है ना वो बहुत विचित्र है। अगर हम गौमूत्र को बहुत गरम गरम करते जाएंगे तो उसका रंग जो है वो गाढ़ा 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 होते जाएगा। तो सबसे ये जो गोरोचन है ना, गोरोचन ये एक गौमूत्र से बनाया गया एक द्रव्य है। इट्स एलिमेंट मेड बाय काउ यूरिन, जो बहुत सोने से भी अधिक पीला होता है, उसकी पूजा में उपयोग होता है। खास करके जब हमने राधा गिरधारी का उद्घाटन समारोह देखा ना, प्रतिष्ठापना समारोह, तो उसके अंदर गौरोचन भी था और वो 28 व्यंजन जो थे वो भगवान के विग्रहों को दिखाते हैं कि ये व्यंजन अभी आपके सेवा में लगेंगे। एक एक दिखाते हैं पहले और बाद में सब हाथ में रखते हैं और फिर वो भी उनको दिखाते हैं, आईने में दिखाते हैं। तो ये प्रतिष्ठापना की विधि में गौरोचन का काम है। तो वो रंग जो है वो राधा रानी के सखी ललिता देवी का रंग है। वृंदावन के उत्तर दिशा में उनका खुद का कुंज है। एक और रहस्य की बात यह है कि उनका गांव तो सबका है अपना अपना, लेकिन उनका कुंज भी है खुद का, जहाँ पर वो कृष्ण को बुलाती हैं और लीला करती हैं। तो इनके कुंज का नाम है रहस्य कुंज, और उनके कुंड का और भी दो नाम है, एक है स्वानंद सुखदा कुंज, एक है ललितानंद कुंज। स्वानंद सुखदा कुंज सुनकर किसी को किसी की याद आती है क्या? हाँ, हम लोग बड़े होशियार लोग हो, वेरी गुड। तो हम लोग जो मायापुर जाते हैं गोद्रुम द्वीप में, तो जहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद ने अपना घर बनाया, अपना गवर्नमेंट का नौकरी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया लेकिन फिर भी उनको रखा गया, तो वो गोद्रुम में शिफ्ट हो गए। और जहाँ से उन्होंने गंगा जलांगी के पार दर्शन किया कि एक बहुत दिव्य प्रकाश देखा उन्होंने, और दिव्य प्रकाश में उन्होंने देखा कि हर एक रंग के, अलग अलग प्रकार के रंग के लोग जो है वो हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन कर रहे हैं झूम झूम के। पहला दर्शन किया प्रकाश का, बाद में सब भक्तों का, अलग रंग रंग के, अलग देश के लोगों का, और उसके बाद में तीसरा दर्शन भी किया, एक अद्भुत बंदर का दर्शन किया उन्होंने, जो नित्यानंद प्रभु फिर जीव गोस्वामी को जब मायापुर की परिक्रमा देते हैं उसमें उनको दिखाते हैं कि एक यहाँ पर अद्भुत मंदिर प्रकट होगा, जिसमें फिर आगे कलयुग में सभी विश्व भर के लिए हरि नाम का प्रचार होगा। तो वो घर का नाम जो है वो स्वानंद सुखदा कुंज है, जिन्होंने अपने घर को दिया था, जो ललिता देवी के कुंज का नाम है। इसका कलर जो है वो विद्युत की तरह है, कलर ऑफ लाइटनिंग, ये उसके घर का रंग है। और कहते हैं कि 6 प्रकार के ऋतु होते हैं ना, 6 प्रकार के ऋतु, जैसे वसंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, वर्षा ऋतु है, और तो ये सारे ऋतु जो है 6 प्रकार के, ये भगवान के लीला में सहायता करते हैं। भगवान की इच्छा के अनुसार एक एक आते हैं और भगवान की लीला में शोभा बढ़ाते हैं। कहते हैं कि ये सारे ऋतु भी व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं वो। सब लोग बंदर की ओर देख रहे हैं, क्यों? वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। हरे कृष्णा, कुछ नहीं उठाएगा, डोंट वरी। तो 6 ऋतु जो है वो 6 व्यक्ति समान व्यक्ति रूप है, और 6 व्यक्ति के रूप में जो 6 ऋतु हैं वो ललिता के कुंज का रक्षण करते हैं, लालन पालन करते हैं, पोषण भी करते हैं। और ये 8 पंखुड़ी के आकार का बना हुआ है और ये ललिता की इच्छा के अनुसार प्रसारित होता है या आकुंचित होता है। एज पर द डिजायर ऑफ ललिता इट एक्सपांड्स और इट कम्स टुगेदर। वो दिव्य धाम है ये। इनके पति का नाम है भैरव। अभी आपको पता है ना सब लोगों को कि ब्रह्मा जी ने जब ये सब बछड़े चुराए तो एक साल तक तो ब्रज में सब ग्वाल बाल तो कृष्ण ही थे, और उन्होंने एक साल में सब गायों गाय के बछड़े भी कृष्ण थे। तो उन्होंने इस एक साल के विधि में बाबा को नंद बाबा को विनती किया कि अभी बहुत अच्छा मौसम है, अभी गोपियों का विवाह कर देना चाहिए। तो उन्होंने सभी गोपियों का सभी गोल बालों के साथ में विवाह हो गया। उसमें राधा रानी का विवाह किससे हुआ? हाँ, अभिमन्यु के साथ में हुआ। कहाँ पर हुआ? जावट गांव में, जावट वो ससुराल है उनका, जटिला कुटिला। तो उस समय ललिता देवी का विवाह जो है वो भैरव जी के साथ में हुआ, और वो भी जावट में विवाह के बाद में उनका ससुराल है। और ये जो भैरव है ये चंद्रावली सखी के जो पति हैं उनका नाम है गोवर्धन मल्ल, वो उनका गोवर्धन के पास में गांव है, बिलचू कुंड के पास में है, उसको बहुत प्रसिद्ध है वो। और चंद्रावली के जो पति हैं गोवर्धन मल्ल, इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं भैरव जी। ललिता देवी भगवान के जो आठ सखियां हैं उनके हर एक सखी के तीन तीन मंजरियां सेविका हैं, ओके। और हर एक इस मंजरी के एक एक कोटि असिस्टेंट गोपियां होती है। तो हर एक अष्टसखी के अष्टसखी में जो इतनी सखियां हैं उसमें हर एक सखी के पास तीन तीन कोटि सखियां सहचरी के रूप में रहती हैं, असिस्टेंट के रूप में रहती हैं। और ललिता देवी के जो असिस्टेंट है उनका नाम सुनना है आपको, रूप मंजरी, लबंग मंजरी और रति मंजरी, जो प्रधान मंजरियां हैं हमारा संप्रदाय, जिन मंजरियों के जिन जिस मंजरी के आधार पर बना हुआ है रूप मंजरी, जो रूप गोस्वामी बने, रूप मंजरी ललिता देवी की प्रधान सखी हैं। और सनातन गोस्वामी किसके अवतार हैं? रति मंजरी के अवतार हैं, नहीं लबंग मंजरी के अवतार हैं। तो ये प्रधान सखियाँ ललिता देवी की हैं। और मुझे याद आता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन की लीला कर रहे थे ना, तो वो मंदिर साफ कर रहे थे, अगले दिन जगन्नाथ जी महाराज आने वाले थे, तो उसमें सब लोग केवल एक ही बात बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? हरी हरी, हरी हरी, बोलो हरी हरी, हरी हरी, हरी हरी। तो ये सारे बड़ी लीला में सब लोग पानी ले रहे थे, साफ कर रहे थे, पहुँच रहे थे उसको। तो उसमें कुछ भक्त लोग बंगाली भक्त लोग थे, उन्होंने क्या किया, पानी लेके चैतन्य महाप्रभु के पैर पे डाला, चरण कमल पे पानी अर्पण किया। और वो जो पानी वहाँ से बह के आया वो उन्होंने पिया, तो महाप्रभु चैतन्य ने बाहरी दृष्टि से क्रोध दिखाया, हृदय में उन्होंने बहुत आनंद का अनुभव किया। फिर एक बार उन्होंने ऐसा हिम्मत किया तो दूसरी बार भी पानी डाला, दूसरी बार भी पिया और तीसरी बार भी पिया, तब जाकर भगवान ने क्रोध प्रकट किया। और ललिता की जो अवतार हैं स्वरूप दामोदर जी है ना, तो स्वरूप दामोदर जी भगवान के चैतन्य महाप्रभु के विशेष असिस्टेंट थे। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे बंगाली भक्त कैसे हैं, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई कल्चर नहीं, संस्कृति नहीं, कुछ नहीं, इनको सिखाओ जरा कैसे बर्ताव करना होता है, ये कोई तरीका है, मैं भगवान का भक्त हूँ, मेरे चरणों की पानी पी रहे इस तरह से उन्होंने डांटा उनको। लेकिन प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस दिन से ललिता देवी ने सारे गौड़ीय वैष्णवों को अपने छत्र छाया में ले लिया। बोलो हरि बोल। आनंद नहीं आया आपको सुनकर ये कि हम सब लोग गौड़ीय संप्रदाय के ही भक्त हैं और हमारी डायरेक्ट देखभाल जो है तो ललिता देवी करती हैं। स्वरूप दामोदर को सौंप दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि ऑल दिस बंगाली डिवोटीज शुड बी ट्रेन्ड बाय यू। तो ललिता देवी हमारी खास रखवाली हैं, उनकी छत्रछाया में हम जा रहे हैं। ललिता देवी बहुत महान है, जैसे उनके पिता हैं अशोक महा नाम महागोप हैं, सब परम सखियों के वो नेता हैं, और इन्हीं की प्रेरणा से सारी लीलाओं का आयोजन ब्रज में होता है। इनकी दूसरी सखी है विशाखा देवी, और विशाखा सभी देवी के अधिकार में वृंदा देवी सेवा करती हैं। और जब भी कोई योजना बनानी होती है सबसे पहले ललिता विशाखा बैठती हैं और योजना बनाती है, फिर वृंदा देवी को बताती हैं, फिर वृंदा देवी कि पूरे ब्रज में कई सारे भंडारे हैं, स्टोर हाउसेस सब जगह पर भरे हुए हैं, उसमें वस्त्र है, उसमें किचन है, उसमें अलंकार है, उसमें वन है, उसमें वन के कितने प्रकार के रंगों के वन हैं, कितने प्रकार के रंगों के फूल वहाँ खिलते हैं, ये सब उनके स्टॉक हाउस में है। और जैसे ही योजना बनती है फिर वो तय करते हैं कि आज कहाँ लीला करनी है, फिर कौन राधा को सजाएगा, कौन कृष्ण का श्रृंगार करेगा, कौन कहाँ से लेके आएगा, फिर कौन नृत्य करेगा, कौन से राग में नृत्य करेंगे, कौन सा गीत गाएंगे, कौन से कलर के श्रृंगार करेंगे, कौन से कलर के फूलों के वन में जाएंगे, किस प्रकार की लीला करेंगे, कौन सा गीत गाएंगे, कौन से ताल में नृत्य करेंगे, ये सारा आयोजन ललिता विशाखा देवी करती है और उसका एग्जीक्यूशन जो है वो वृंदा देवी करती है। और जब भी राधा कृष्ण का संबंध होता है तो कृष्ण के भी कई प्रकार के सखा हैं, प्रिय नर्म सखा, नर्म सखा, और तो वैसे भी राधा रानी के भी सखियों के काफ़ी लेवल्स हैं। बताता हूँ, सबसे जो छोटी मतलब इधर से वो सब लोग हमारे संप्रदाय में, हमारा संप्रदाय बहुत क्रांतिकारी संप्रदाय है, सबसे नीचे जो होता है वो सबसे ऊपर होता है ना, तो सबसे नीचे जो है वो किंकरी सेविका है। किंकरी यानी वो खाली एक ही बात पूछती है, क्या पूछती है, किम कर रहा, क्या करूँ। हम सबको ये पूछना चाहिए क्या करूँ, दैट्स ऑल, एक ही प्रश्न है जो पूछने जैसा है जीवन में। तो उसके बाद में है दासी, उसके बाद में है मंजरी, उसके बाद में है सखी, उसके बाद में है नित्य सखी, उसके बाद में है प्राण सखी, उसके बाद में है प्रिय सखी, और उसके बाद में है परम श्रेष्ठ सखी या परमेष्ट सखी। और ये करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, अनंत खरबों गोपियां हैं, उसमें से 16,000 गोपियां भगवान को अति प्रिय हैं, उनमें से 108 बहुत प्रिय हैं, उनमें से 8 बहुत प्रिय हैं, और उन 8 के अलावा 2 गोपियां उन 8ों से भी अधिक प्रिय हैं, वो है राधा और चंद्रावली, और उन दोनों में से राधा रानी भगवान को बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से जब भी राधा और कृष्ण का संबंध होता है तो कृष्ण के साइड से उज्ज्वल और सुबल उसके बीच में रहते हैं, वो एकदम भगवान के निकट के श्रृंगार रस और साखे रस के बीच में है वो दोनों, और वहाँ से ललिता विशाखा राधा रानी के साथ में रहती हैं। तो जब भी ये संबंध होता है तो ललिता देवी हमेशा कृष्ण के विरोध में बात करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वहाँ पर बरसाने में आगे एक भानुखर है, भानुखर कई प्रसंग ऐसे ललिता की के तेज स्वभाव के वर्णन करने वाले, तो वो भानुखर में सब सखियाँ स्नान कर रही हैं, पिताजी का कुंड है, सब स्नान कर रहे हैं सखियों को लेकर, तो उधर से कृष्ण आते हैं और बड़े नम्रता से पूछते हैं कि ये जो बीच की लाली है वो किसकी लाली है, मतलब किसकी माता पिता है, कौन माता पिता है उनके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ललिता क्या जवाब देती है, नंदगांव पागलों का गांव है, नंदगांव में सब पागल रहते हैं और कुछ कुछ पागल यहाँ भी आके घूमते हैं, कुछ कुछ पूछते रहते हैं पागलों की तरह, चलो हटो यहाँ से। अरे राधा रानी को बड़ी दया आती है, वो कहते हैं अरे इतनी क्यों नाराज हो रही हो, तो केवल प्रश्न पूछ रहा है, बोल देते हैं भानु बाबा की बेटी है, इसमें क्या है, ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए, नहीं नहीं वो उसी योग्यता के हैं। तो राधा रानी थोड़ा सा क्रोध करती है जानबूझकर, वो कहते नहीं आपसे मैं आपके साथ नहीं नहाती, मैं अलग नहाऊंगी, तो अलग चले जाती हो सखियाँ, उस तरह स्नान करते लगती। तो उसमें में कृष्ण जो है वो भी बहुत सभी अभी वो सिंपल प्रश्न का सिंपल उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि डांट पड़ रही है उनको या तो तमाचा पड़ रहा है, तो भी एकदम सहमे सहम जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, खड़े रहते हैं। लेकिन जब राधा रानी को देखते हैं कि वो उनको डांट कर बाजू में हो रही है, तो वो डाइव लगाते हैं और डाइव लगा कर एकदम नीचे चले जाते हैं और राधा रानी के चरण छूते हैं जल के अंदर जाके, और जल के अंदर चरण छू के ऐसे ही तुरंत उनके ऊपर आते हैं, तो राधा रानी को बहुत आश्चर्य होता है वो देखकर। एक जगह पर अभी आप पीली पोखर गए आप लोग यात्रा में, नहीं गए, पीली पोखर में वो होली का निमंत्रण लेकर पांडे आते हैं नंदगांव से, यहाँ की लीला है वो। होली जब होती है ना रंगीली होली, वो नवमी के दिन होती है, भाद्रपद शुद्ध नवमी के दिन होती है रंगीली होली। अष्टमी के दिन वहाँ से पांडे आते हैं, पांडे ब्राह्मण हैं, वो बड़े सज धज के निमंत्रण लेके आते हैं कि हमारे कन्हैया जी से आपको निमंत्रण है, कल आपको होली खेलना है। तो सखिया क्या करते हैं, वो पांडे जी को सारे तरफ से आते हैं और पूरा भिगा देते हैं, मतलब कि हमारे बम्बई भाषा में क्या बोलते हैं, धो डालते हैं। पूरा आप सोच इमेजिन करो, एक व्यक्ति बेचारा ब्राह्मण थोड़ा बुजुर्ग सा है, वो सारी जवान लड़कियां हजारों की संख्या में, वो सब लोग उस पर रंग डाल रहे हैं, पिचकारी मार रहे हैं उसको, क्या क्या कर रहे हैं। वो बेचारा ही इज हैप्पी ऑल्सो, बट वो परेशान हो जाता है कि कैसे निकलू कैसे इसमें से। तो उसमें से राधा रानी आती है, बड़ी दयालु है वो, और ये सब करने में प्रधान कौन है, ललिता देवी उसके निर्देश में सब कुछ हो रहा है। तो फिर राधा रानी आते कहते, अरे नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो तो केवल निमंत्रण देने वाला है, निमंत्रण जिसका है उसको कल देख लेंगे ना, आज इसको क्यों परेशान कर रहे हो आप। तो उनको छुड़ाती है पांडे को और अपने घर ले जाती है, घर जाकर लाकर उसके वस्त्र को नया वस्त्र देती है, गर्म पानी से स्नान करने का, सुगंधित जल से स्नान करने का व्यवस्था करती है, उसको मिठाई भोजन कराती है, शुद्धान दक्षिणा देती है, शाल पहनाती है और पालकी में बिठाकर घर पहुंचाती है नंदगांव में। तो ललिता देवी का तेज स्वभाव जो है वो केवल कृष्ण के लिए प्रीति बढ़ाने के लिए, बार बार उसको गुस्सा आता है और राधा कृष्ण के प्रेम बढ़ाने के लिए बहुत ही तेजी से तेज भाव से कृष्ण से बात करती है। ये जो है ना, ये राधा रानी और कृष्ण और गोपी और सब मिलकर ना, वो रिडल्स रिडल्स होते हैं ना, रिडल्स क्या, कोड़ा कोड़ा शब्द, कोड़ा और कोई बहुत प्रकार के कोड़े होते हैं, कोड़े मतलब क्या बोलते हैं उसको, पजल्स रिडल्स कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो बनाने में ललिता देवी बहुत एक्सपर्ट हैं। और इनकी विशेष सेवाएं जो है वो भी समझना बहुत जरूरी है, ये पुष्प कला में बहुत निपुण हैं। अभी पुष्पों का हम क्या क्या कर सकते हैं बताइए, सेवा में कृष्ण के बताइए, बरसा सकते हैं उनको पुष्प, है ना, अलग अलग हम लोग अभिषेक करते हैं ना, पुष्प अभिषेक, और क्या करते हैं पुष्प के, माला बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, हाँ पुष्प के अलंकार बनाते हैं बहुत सारे, जो कलाई में बांधते हैं, जो कान में बांधते हैं, कभी मुकुट बनाते हैं उसका, राधा रानी का एक फोटो है उसके अंदर तीन चार ऐसे मुकुट चंद्रिकाएं बनी हुई है, कर्ण कुंडल बनते हैं, पुष्प का वस्त्र बनता है पूरा, कभी बनता है ना, हाँ पूरा वस्त्र भी पुष्प का बनता है, और क्या बनता है पुष्प का, भगवान की सेवा में बैकड्रॉप बनता है कि नहीं, डेकोरेशन बनता है ना, यहाँ पर ब्रज में पुष्प का पता है क्या बनता है, वसंत ऋतु में फूल बंगला बनता है, कंप्लीट बंगलो, मतलब पूरा बांके बिहारी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर पूरा जो है एक फूल का बंगला बन जाता है कंप्लीट, और वो बैंगलोर और जयपुर कहाँ कहाँ से उसको फूल आते हैं, टनों में फूल आते हैं, वो फूलों का ही एक बंगला बनता है, उसके अंदर प्रवेश द्वार होता है, उस प्रवेश द्वार में ठाकुर जी का विग्रह रखते हैं, पूरा मंदिर घमघमाता है सुगंध से, तो फूलों का बंगला बनता है, उसके अंदर कितने श्रृंगार होते हैं फूलों के, और क्या होता है बताइए। आप लोग बरसाना की यात्रा किया नहीं किया, उधर एक गहवर बन है, गहवर बन, वो गहवर बन जो है ना उसकी एक विशेषता है, उसमें जो भी कुछ योजना है राधा रानी ने स्वयं अपने हाथ से बनाया उसको, उसमें क्या योजना है, जो भी बनाया है वो सब कमान के रूप में बनाया है, यानी कि उसको कहते हैं वितान, संस्कृत में कहते हैं पुष्प वितान, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ आर्चेस, सब कुछ जो है वो आर्च में बनाया हुआ है, उसको कहते हैं पुष्प वितान। और क्या होता है, पुष्प शैया, जब लीला होती है ठाकुर जी की तो उसके लिए पुष्प की शैया बनाते हैं, बेड, बेड मेड ऑफ फ्लावर्स, और पुष्प के अलंकार, हैंगर्स, अलंकार कर्णकुंडल सब बनते हैं। तो ये जो जितनी भी पुष्पकला है, इस पुष्पकला में एक ही व्यक्ति सबसे निपुण है, वो है ललिता देवी, उनके ही निर्देश में ये अलग अलग प्रकार के अकल्पनीय, मतलब इन अनबिलीवेबल, इनकंसीवेबल प्लान ऑफ फ्लावर डेकोरेशंस इज डन बाय राधा रानी, इज ललिता, और ललिता देवी ये पुष्प सेवा उनकी प्रधान सेवा है, वो अपनी 3 करोड़ सेवाओं और सखियों को इस सेवा में बहुत कुशलता से लगाती है, उनको ट्रेनिंग भी देती है, योजना बनाती है बहुत विविधतापूर्ण। इसके बाद में एक बहुत क्या कहते हैं उसको, डिफिकल्ट एक विद्या है, उसका नाम है इंद्रजाल, आपने सुना है बचपन में, हमने कहानी में पढ़ते थे उसको, इंद्रजाल विद्या को, इंद्रजाल विद्या मतलब किसी को मोहित करते हैं, किसी को भ्रमित कर देते हैं, तो यह इंद्रजाल विद्या की बहुत बड़ी पंडिता है, अब इसमें हम नहीं जाएंगे, बहुत गहरा विषय है, लेकिन इंद्रजाल विशेष एक विद्या है, वो ललिता देवी उसमें बहुत निपुण है। अभी इसमें और एक भाव है, उसको कहते हैं विशुद्ध खंडिता भाव, हाँ जैसे हम लोग अभी कुछ काम पे जा रहे हैं, समझो अभी विवाह होने वाला है किसी का, तो उसका एक मुहूर्त होता है ना, उसका एक टाइम होता है कि हम लोग इतने बजे हॉल पहुंचेंगे, उसके बाद में ये विधि होगा, उसके बाद में ये विधि होगा, उसके बाद में फिर माला का विधि सब का समय ये है मुहूर्त, फिर हाथ धोने का विधि का मुहूर्त ये है, समय होता है। और जब हम लोग एक मुरलीधर प्रभु बैठे हैं, क्या अनुभव है आपका मुहूर्त के बारे में? शादी के लिए आते हैं ना पुरोहित फिक्स करने के लिए, जब महाराज प्रभु जी, महाराज जी देखो 12:15 का मुहूर्त है, ध्यान रखना, बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। फिर कुछ लोग आके बोलेंगे देखो सिंदूर का है ना वो 12:45 का है, उस पर सिंदूर डलना चाहिए तुरंत। बाद में क्या होता है, बेचारे हमारे पंडित जी, हाँ MDS गोल्ड मेडलिस्ट है वो, यू नो, बट उनको 2-2 घंटा इंटरा कराते हैं। मैं एक शादी में गया था तो 3 बजे मुझे बुलाया गया था, तो मैं पहुंच गया 3 बजे लोअर परेल में। 5:30 बजे दूल्हा अकेला स्कूटर में बैठ के आया, और 5:30 बजे के बाद में उसने खुद DTs को लगाना चालू किया। वो बोला अभी अभी श्रृंगार करना बाकी है DTs का, अभी ऑल्टर बनाएंगे उसके बाद में। 6:30 बजे शादी शुरू हुई और मुहूर्त था 4:25 का, वो पुजारी जाके बैठे हैं। लेकिन तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भारतवर्ष में सभी लोगों के जीन्स के अंदर, मतलब पैंट के अंदर नहीं, जीन्स वो अंदर होता है ना, गुणसूत्र कहते हैं उसको, गुणसूत्र और जीन्स दोनों होते हैं, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। वो क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर DNA होता है, और DNA में लिखा है 20 मिनट्स लेट। इसलिए हम कहीं भी जाते हैं तो 20 मिनट तो लेट जाते ही रहते हैं, कभी भी कुछ भी बोलो आप। तो वो लेट जाना और लेट होना, और लेट होने के बाद में जो हार्ट बीट बढ़ती है, जो एंग्जाइटी होती है, अरे लेट हो रहा है जल्दी करो बेकअप जल्दी करो, वो भाव को कहते हैं विशुद्ध खंडिता भाव। अभी समझ में आया आपको? भारत के लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है विशुद्ध खंडिता भाव। लेकिन राधा रानी और कृष्ण की लीला में ये भाव उत्सुकता और प्रेम को बढ़ाने के लिए बहुत बार प्रकट होता है, जानबूझ के प्रकट होता है वो। कभी कृष्ण जानबूझ के लेट आता है, कभी राधा रानी का लेट होता है, कभी सखिया इतना प्रेम से श्रृंगार कर रही है तो कुछ खत्म ही नहीं होता है वो। तो विशुद्ध खंडिता भाव जब उत्पन्न होता है तो उसको हैंडल करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, कोई कोई चिल्ला रहा है, कोई जल्दी जल्दी बोल रहा है, कोई ऐसा करो वैसे करो, कोई कुछ इधर उधर, ये जल्दी में ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना। तो ये जो स्थिति है जब लेट होता है, तो उस स्थिति को हैंडल करने में ललिता देवी बहुत एक्सपर्ट है। अब इसकी एक लीला बताता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर राधा रानी का श्रृंगार हो रहा था, और उस दिन मुलाकात का समय हो जगह तय किया था वो अंजनोक अंजनपुर में, और कृष्ण भगवान अपने समय पर छत धज के आ जाते हैं वहाँ पर, देखता है तो कोई नहीं, सखियाँ वहाँ कोई नहीं, तो पता चलता है कि अभी तक श्रृंगार हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, उनको रहा नहीं जाता है, तो तुरंत मुरली निकाल के मुरली बजाते हैं, 8वीं धुन बजाते हैं जो केवल राधा राधा पुकारती है। तो 8वीं धुन बजाते हैं तो राधा रानी को सुनाई पड़ता है, अरे कृष्ण भगवान पहुंच गए, चलो जल्दी जल्दी करो, नहीं थोड़ा बाकी है, नहीं नहीं थोड़ा, ललिता देवी बोलती नहीं 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 बाकी है थोड़ा थोड़ा। तो राधा रानी एकदम इतनी व्याकुल हो जाती है, सीधे निकल जाती है, और ललिता देवी उसके पीछे भी भाग रही है, और राधा रानी बोल रही थी कि इतना लेट हो गया, कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे, कब से हम जाना चाहिए था, पहले जाके उनको स्वागत करना चाहिए था, हम लेट हो गए। ललिता देवी उनको मना रही है, समझा रही है, और भाग भाग के वहाँ पहुँचती है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो कृष्ण भगवान जोर से हंस पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि इनका सुंदर श्रृंगार किया है लेकिन आंखों को काजल लगाया नहीं, रह गया वो, लगाओ लगाओ बोल रहे थे, नहीं अभी टाइम नहीं, छोड़ो अभी। तो जब वो जोर से हंस पड़ते तो राधा रानी कहती है क्या हुआ, बोले काजल तो लगाया नहीं। तो बोले मैं जाके आती हूँ, लगा के आती हूँ। बोले कोई बात नहीं, जब तुम आ चुकी हो तो वापस जाने का कोई काम नहीं है, हम आपका श्रृंगार पूरा कर देते हैं। तो वहाँ पर एक शिला है, गजरोठी शिला, उस पर अपनी उंगली घिसते हैं, काजल उत्पन्न करते हैं, और अपने सुंदर कर कमलों से, उंगलियों से उनको काजल लगाते हैं, उनका श्रृंगार पूरा करते हैं। हाँ, तो वो जो भानु महल से आंजनोक तक का जो सफ़र है, उसके अंदर जो भी उत्कंठा प्रकट हो रही है उसको हैंडल करने में ललिता बहुत एक्सपर्ट है। और इस कथा का भी एक सार है कि हमारे जीवन में हम लोग कितना भी कोशिश करेंगे तो हमारे प्रयास में हमेशा कमियां रहती हैं, ऑलवेज देयर आर डेफिशिएंसीज, लेकिन जो प्रामाणिक हृदय से कृष्ण के लिए सेवा करने का प्रयास करते हैं उनकी सारी कमियां कृष्ण स्वयं पूरी कर देते हैं। जैसे राधा रानी का श्रृंगार अधूरा था, जानबूझ के अधूरा रखा नहीं था, प्रेम से भाग के आई थी वो, तो कृष्ण ने उसको पूरा किया। और राधा रानी के जो मंतव्य था कि मैं सुंदर बनकर कृष्ण को प्रसन्न करूं, उसको कृष्ण भगवान ने पूरा करके सहायता किया। तो ये है विशुद्ध खंडिता भाव। अभी ललिता देवी जो है इनकी बहुत विशेष सेवा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब एक जावट में बैठे हैं और कृष्ण कोकिलावन से मुरली बजा रहे हैं, बहुत व्याकुल हो रहे हैं, क्या करना है, तुरंत निकलते हैं मिलने के लिए, चलो मिलना है। दरवाजे पर कौन बैठी है? चटिला देवी, सासू महारानी, डंडा लेकर बैठिए। कहाँ जा रही हो? कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ अंदर। तो उस समय भी जो उत्कंठा उत्पन्न होती है तो ललिता देवी उसमें सहायता करती है। अभी आप सब जानते हैं कि पुत्र प्राप्ति और पुत्री प्राप्ति के लिए विश्वभानु महाराज, नंद महाराज जो है यहाँ से यमुना किनारे गए थे, और यमुना किनारे पे रावल में विश्वभानु महाराज ने अपना राज्य बसाया था और गोकुल में नंद महाराज ने अपना राज्य बसाया था। तो यथावकाश कृष्ण बलराम का जन्म होता है, नंद महाराज कृष्ण बलराम प्राप्त करते हैं और विश्वभानु महाराज को राधारानी का प्राप्ति होता है। लेकिन बहुत आतंक होता है वहाँ, बहुत रोज राक्षस आते हैं। सुखदेव जी ने, महाराज ने तो कुछ कुछ प्रमुख राक्षसों का वर्णन भागवत में दिया है क्योंकि उनके पास समय की कमी थी, लेकिन अन्य पुराण में वर्णन यह है कि हर रोज कंस की ओर से एक राक्षस निकलता था और हर रोज का आतंक होता था और रोज नंद बैठक होती थी, उसमें रोज चर्चा होती थी, रोज आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। तो एक दिन ये चर्चा हुआ कि बहुत अभी कष्ट हो रहा है यहाँ पर, तो रोज का रोज यहाँ पर आतंक, हम लोग उसका कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पास जो आतंक की कल्पना है ना, वो केवल बॉम्ब फटने की कल्पना है। हम बॉम्ब जब फटता है तो कहते हैं आतंक हो रहा है, लेकिन उस समय एक साथ तूफान आ रहा है, एक साथ बादल वर्षा भी हो रहा है, एक साथ भरणीकंप भी हो रहा है, एक साथ गर्भवती माताओं का गर्भपात भी हो रहा है। भयंकर ऐसे प्रकृति के कई प्रकार के आतंक एक साथ राक्षस की वजह से हुआ करते थे। तो उन्होंने तय किया कि हम लोग वापस आएंगे। तो पहली मुलाकात जो है कृष्ण भगवान की राधा रानी की, जब राधा रानी का जन्म हुआ तो हुई, तब तो वो रेंगते बालक थे, राधा रानी तो एकदम पढ़ने में थी। उसके बाद तीन साल चार महीने के बाद में वो लोग शिफ्ट हो गए, राधा रानी इधर आ गई बरसाने में और नंद महाराज जो है नंदगांव में चले गए कृष्ण भगवान। उनकी जो पहली मुलाकात है, वो पहली मुलाकात जो है वो प्रेम सरोवर वन में हुई है। वो लुका छुपी खेल रहे सब सखियाँ, और एक सखी का आँख बंद करके उसको गोल गोल घुमाते हैं और छोड़ देते हैं, और बाकी सखियाँ छुप जाती हैं कहीं कहीं। तो उन सखियों को, उस बंदी हुई आँख बंदी जिसकी हो गई है, उसको किसी एक सखी को पकड़ना होता है जाके, आँख बंद होते हुए छूना है, तो छू लिया, जिससे छू लिया उसको पट्टी निकाल के उसको पट्टी बांध के फिर उसको घुमा देते हैं। आप लोग खेले ना बचपन में? हम लोग बहुत खेले हैं बचपन का खेल। तो वो आँख मिचौली का खेल वहाँ पर हो रहा था, कहाँ पर? प्रेम सरोवर वन में। तो राधा रानी एक सखी को बांध दिया है, आँख बांध कर घुमा दिया है, राधा रानी को एक कुंज में भेज दिया। वो कुंज कौन सा था? प्रेम सरोवर वन। उसमें वो जाके छुपने का प्रयास कर रही थी। बहुत घना वन था और बहुत घना होने की वजह से दिन में भी अंधेरा था। तो जैसे ही वो सघन वृक्षावली के वन में वो प्रवेश करती है तो उसे एक नीला बालक वहाँ दिखाई पड़ता है, जो पीतांबर पहनकर मोरपंख धारण करके मुरली धारण करके वहाँ पर बैठा हुआ है। जैसे राधा रानी आती है फर्स्ट टाइम, यार 3-4 ईयर ओल्ड 5 ईयर ओल्ड, तो उसको राधा रानी को देख के ही ये बालक जो है कृष्ण बेहोश हो जाता है। उनकी सौंदरता को देखकर पूरी तरह से भाव विभोर होकर बेहोश हो जाता है, और राधा रानी भी उसको देखकर इतनी हृदय में प्रेम के फव्वारे फूटते हैं, इतना उत्कंठा प्रेम की उत्पन्न होती है। और कुछ व्यक्त करने के पहले लिखती कि लड़का बेहोश हो गया, तो बड़ा दुख होता है उनको, उनको लगता है कि कुछ करना चाहिए। अरे इतना सुंदर पुत्र था ये किसी का, ग्वाल बाल इतना सुंदर था, उसकी आंखें कितनी कमल नयन जैसी थी। तो वो सोच रहे कि मैं आगे जाऊं, कुछ उसको जल छिड़कूं उसके ऊपर, कुछ हवा दूं, कुछ बात करूं, कुछ होश में लाऊं। उतने में बुलावा आता है, अरे पकड़ लिया राधा रानी, आ जाओ। तो भी दुविधा में जाती हो कि अभी इनकी सेवा करूं कि जाऊं। तो फिर आगे बढ़ती है इनको कुछ करने के लिए, वापस आओ, ललिता पुकारती है, अरे चलो। तो वो चले जाती है, समाओ शी गॉट पुल्ड बाय द कॉल्स। लेकिन जैसे ही वापस पहुंचती है बड़ी दुखी हो जाती है कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने उस बेहोश लड़के को कुछ करना चाहिए था, मैं अकेली थी और कोई नहीं था वहां पर। और उस दिन से जाती है अपने घर में, उस दिन से खेलना खाना पीना सोना सब बंद कर देती, किसी से बात नहीं करती, ना खेलने को आती है ना कुछ करती है। कीर्ति मैया वृषभानु महाराज परेशान हो जाते हैं। उतने कुछ देर के बाद में कृष्ण जो है वो श्याम सुंदर जी जग जाते हैं, होश में आते हैं और देखते हैं कि कोई नहीं है वहाँ पर, और उसको याद करके वो व्याकुल हो जाते हैं, बड़े उदास होकर चले जाते हैं अपने घर। और उस दिन से नंद भवन जाने के बाद में ना माखन खा रहे हैं, ना सखाओं से मिल रहे हैं, ना खेलने जा रहे हैं, ना गाय चरा रहे हैं, ना कुछ नहीं कर रहे हैं। मैया परेशान। तो फिर यहाँ पर कीर्ति मैया ललिता को जी को बुलाती, जो देखो श्री जी कितने दिन से कुछ खा नहीं रही है। बोले कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ। जाती है अंतपुर में, ललिता देवी बड़ी कुशलता से उसको पूछती है, वो बात ही नहीं करे, केवल रो रही है। फिर बोलती है क्या हुआ, तो उस दिन जब मैं हम आँख मिचौली खेल रहे थे तो उस कुंज में मैंने एक नीले बालक को देखा, मुझे देखकर बेहोश हो गया, बड़ा मुझे प्रेम आया उसके प्रति, लेकिन आप लोगों ने बुलाया इसलिए मैं चली आई, तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसी के बारे में मेरा मन में विचार आ रहा है, मैं व्याकुल हो रही हूँ, कौन था वो बालक, कहाँ से आया था। तो ललिता जी उसका वर्णन पूछती है, वर्णन सुनते ही पूरा, डोंट वरी मैं इसका इंतजाम करती हूँ, और नंदगांव चले जाती हूँ। नंदगांव में यशोदा माता जी वहाँ परेशान है, और ललिता देवी का भी कई बार सहायता करती है, लेती है यशोदा माई, तो उसको पुलाती है, अच्छा हुआ तो आई, हमारे कान्हा कितने दिन से कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ माखन भी नहीं खा रहे हैं, बड़े परेशान लगते हैं, आप जाके कुछ बात करो। तो कहते मुझे एकांत में बात करनी होगी, बोले जाओ जाओ। तो उसको अकेले में भेजती है रूम में, तो कृष्ण भगवान भी रो रहे हैं, तो बड़ी कुशलता से उनसे बातचीत करके ये रहस्य निकाल लेती है। वो कहते हैं कि जब मैं उस दिन घूमते घूमते किसी कुंज में गया था, तो किसी में सुनहरी गोरे रंग की लाली को देखा उधर, इतनी सुंदर नीले वस्त्र पहनी हुई थी वो, इतनी श्रृंगार किया था, उसको देखकर मेरे हृदय में इतना प्रेम आया कि मैं वहीं बेहोश हो गया, मैं अपने आप को काबू में रख नहीं पाया। जब मैं होश में आया तो उस वन में कोई नहीं था, तब से मैं दुखी हूँ, उसी की छवि मेरे आंखों के सामने आती है, पता नहीं मैं क्यों जीऊँ उसके बिना, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। तो ललिता कहती है कोई चिंता करने की बात नहीं, मैं आपको उसका मिलन कराऊंगी। तो ललिता देवी कृष्ण को लेकर, फिर वो तो पूरे अभी कृष्ण के ट्रीटमेंट के, कृष्ण का ट्रीटमेंट उसके अंडर है ना, डॉक्टर को तय कर दिया कि आपको ट्रीटमेंट करना है, तो कोई अभी परहेज नहीं उनके लिए, कोई बंधन नहीं है। तो ऑफिशियली ललिता देवी यशोदा माता के सामने कृष्ण को लेकर, सखियों को लेकर उधर आती है, नंदगांव में एक कुंड है ललिता कुंड, उधर वो उनको स्नान कराती है, और सब सखियां मिलकर उनको और एक गांव में लेके आती है, उनका नाम है पहनावली, वो नंदगांव में ही है, एक पीछे जंगल में है वो पहनावली गांव में। ललिता देवी के नेतृत्व में सारी सखियां श्याम सुंदर जी को दूल्हा का वस्त्र पहनाती है, और वहां से उनको आगे लेके जाती है सजा धजा कर, और एक गांव में और रुकती है, उसका नाम है कजरोठा, मतलब नाम बाद में पड़ा, लेकिन गांव में रुकती है, और सब सखियां मिलकर प्रेम से कन्हैया जी को काजल लगाती हैं, और दूल्हा बनाकर सज धज कर कुछ सखियों को आगे भेज देते हैं, और कहते हैं श्री जी को मैसेज भेज देना कि वो मिल गए हैं और हम लोग आ रहे हैं, अभी कोई दुख करने का कोई बात नहीं, अच्छी तरह श्रृंगार करो उसका। तो यहाँ पर भी फिर श्री जी बहुत खुश हो जाती है, और उनका बड़ा प्रेम से श्रृंगार करते हैं, और सब सखियाँ उनको बड़े ही, मतलब एक तो गुप्तता से और एक बड़े ऐश्वर्य के साथ में उनका श्रृंगार करके उनको प्रेम सरोवर में लेके आते हैं, और ललिता देवी के माध्यम से कृष्ण का और राधा रानी का प्रथम मिलन जो है इस विभाग में ललिता के माध्यम से होता है प्रेम सरोवर में। फिर प्रेम सरोवर में उनका मिलन होने के बाद में वो लोग श्रृंगार कर लिए, आगे लीला करते हैं, उसके बाद में प्रेम सरोवर प्रकट हुआ है, और फिर वहाँ पर वो लोग बोट लीला, मतलब नौका विहार लीला करते हैं। जिस तरह से राधा रानी और कृष्ण के प्रथम मिलन के विषय में ललिता देवी का बड़ा सहभाग है। फिर ललिता देवी का एक फेमस कुंड और एक जगह पर, ललिता कुंड बहुत जगह पर है, ललिता देवी भगवान को इतनी प्रिय है कि निधि वन में जब भगवान रास रचाते हैं तो ललिता देवी को प्यास लगती है, तो निधि वन के अंदर भगवान ने ललिता देवी के लिए बंसी से कुआं खोदा है, ललिता कूप, और वहाँ से उसको पानी पिलाते हैं। यहाँ पर भी आप अगर बरसाने गए हैं तो दान बिहारी का मंदिर है दानगढ़, उस दानगढ़ पर भी बरसाने नंदगांव में बहुत श्रृंगार रस भगवान ने अनुभव किया है, तो उसमें जब प्यास लगती है तो पत्थर के पहाड़ में भगवान ने मीठे पानी का कुआं खोद के ललिता देवी को पानी दिया है। ऐसे ब्रज में कई स्थान है जहाँ पर खास ललिता के लिए कृष्ण भगवान ने कुंड या कुआं खोदा है और उनको जल पिलाया है। तो हम लोग सब यहाँ बैठकर वो जो कुंड है ललिता कुंड गोवर्धन का, वो राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण होने के पहले निर्माण हुआ था उसका, और शास्त्र में ऐसे लिखा है कि अपने श्याम कुंड को निर्माण करके स्नान करने के पहले कृष्ण भगवान ने ललिता कुंड में स्नान किया है, ललिता जी का आशीर्वाद और कृपा लेकर फिर श्याम कुंड का निर्माण किया है। तो वो ललिता कुंड बहुत विशिष्ट है, जो राधा कुंड श्याम कुंड के आप जो परिक्रमा करते हैं ना तो लेफ्ट साइड में आता है। तो ऐसे कहा गया है, हे ललिता कुंड आपको प्रणाम है, आप बहुत सुंदर हैं, आपके अंदर चमकता हुआ जल है, और जो भी इसमें स्नान करता है उसे हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। ये कुंड जो है वो ललिता देवी के कृष्ण के प्रति जो विशेष प्रेम है उसका प्रतिनिधित्व करता है। हर प्रकार के बाधाएं जो हमारे भक्तिमय जीवन में आते हैं भगवान की भक्ति में, उसको ये कुंड का स्नान नष्ट कर देता है। तो आप लोग हम सब मिलकर इस कुंड को यहीं से प्रणाम करेंगे, ललिता देवी का कुंड है, मंत्र बोलकर आप बोलेंगे नमो पातक विघ्न अघ्नौ ललिता मोहनौ, नमो पातक विघ्न अघ्नौ ललिता मोहनौ, शुभौ स्नपयेहम्। जोर से बोलिए शुभौ स्नपयेहम् विमोक्षय कुंडौ नीरमनोहरौ। ये श्लोक स्कंद पुराण में आता है। ऐसा लिख कहा गया है कि ब्रज में ऐसे हरेक स्थान के मंत्र हैं और वो मंत्र उच्चारण करने से ध्यान करने से बहुत हृदय की शुद्धि होती है। इस प्रकार से ललिता के कुंड में 68 होली प्लेसेस आने आकर तीर्थों ने आकर आश्रय लिया है। और ललिता कुंड में स्नान करने का जो महात्म्य है वो सुन लीजिए। मैंने ये गर्भपात के विषय पर मैंने बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारा पढ़ाई किया था, लेकिन किधर भी मुझे गर्भपात का पाप जो है उसका उपाय कहीं नज़र नहीं आया। जो जो मैंने पढ़ा उसमें ऐसा लिखा कि गर्भपात जो व्यक्ति करते हैं उनको दिन का उजाला कभी नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब बार बार उनका खुद का गर्भपात होता रहेगा, क्योंकि गर्भ में जो बहुत अंधकार होता है अंदर, बहुत पीड़ा होती है, उधर बालक को बहुत कष्ट होता है अपने मूत्र और अपने टट्टी पेशाब में वो खुद घूमते रहता है, अपनी उल्टी उसके अंदर घूमते रहता है। तो जो व्यक्ति गर्भपात करते हैं मनुष्य जीव का, उन्हें केवल मैंने ये पढ़ा था कि बार बार उनको माता के गर्भ में आकर वापस उनका गर्भपात होते रहेगा, दिन का उजाला उनको नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब मैं ललिता कुंड का महिमा पढ़ रहा था तो उसमें ये 6 जो प्रकार के हत्या अपराध हैं, 6 प्रमुख हत्या अपराध हैं बहुत भयंकर, उसमें से एक है किसी व्यक्ति का खून कर देना, दूसरा है कृमि हत्या, तीसरा है गो हत्या, चौथा है ब्रह्म हत्या, पांचवा है श्वान हत्या और छठवा है आत्महत्या। उसमें एक हत्या आती है भ्रूण हत्या। खून मतलब किसी व्यक्ति का, किसी की जीव का खून, खास करके गर्भ का जो खून यानी गर्भपात, कृमि हत्या, गाय की हत्या, ब्रह्म की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, कुत्ते की हत्या भी बहुत भयंकर मानी गई है, और लास्ट है आत्महत्या। बहुत लोग इतने परेशान हो जाते हैं दुनिया में, सोचते हैं कि आत्महत्या करेंगे तो सारा दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्महत्या करने के बाद में व्यक्ति पिशाच बन जाता है और जितना समय उस जीवन में उसको प्राप्त था उतने समय तक उसको पिशाच बन के लटकना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है उसके अंदर, उसको तभी लगता है कि जो कष्ट हो रहे थे वो तो बहुत कम थे इससे। इसलिए आत्महत्या बहुत जघन्य पाप है, किसी भी जीव को जो मनुष्य शरीर प्राप्त कर चुका है उसे कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। कोई समस्या आती है तो हमारे पुराने कर्मों से आती है और उसको झेलने का भी शक्ति जो है वो भगवान स्वयं उस व्यक्ति को देते हैं। हमको भक्तों पर और भगवान की कृपा पर भरोसा करके कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तो ललिता कुंड में स्नान करने से ये सारे हत्याओं का अपराध से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ओनली वन प्लेस आई फाउंड, जो गर्भपात का पाप करने वाले लोग भी इसमें आकर अपना पाप का शालन कर सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने अरिष्टासुर मारने के पहले, राधा कुंड को निर्माण करने के पहले ललिता कुंड में स्नान किया और उसके बाद में राधा रानी की इच्छा पूर्ण करके उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण किया। गोपियों को विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण ने 68 तीर्थों को बुलाया हुआ है। तो 68 तीर्थ जो व्यक्ति रूप में आकर एक एक करके अपना परिचय देते हैं राधा रानी को। तो कृष्ण भगवान ने ऐलान कर दिया है कि राधा ललिता कुंड जो है वो ललिता का द्रवित प्रेम है, जल नहीं है वो, ललिता का द्रव रूप प्रेम है और इसको स्पर्श करने से, प्रणाम करने से, देखने से, प्रार्थना करने से, याद करने से, जो व्यक्ति याद करता है वो बहुत ही जल्द राधा रानी की कृपा प्राप्त करता है और जहाँ पर भी राधा रानी है उसके निकट संग प्राप्त करता है। श्री ललिता कुंड धाम की जय। चैतन्य चंद्रोदय नाटक जो हमारा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत एसोटेरिक, उसमें लिखा गया है कि गदाधर पंडित जो है वो स्वयं राधा ललिता और कृष्ण के तीनों के अवतार हैं, ऐसा लिखा है उसके अंदर। ध्रुवानंद ब्रह्मचारी ये भी ललिता जी के अवतार हैं, स्वरूप दामोदर भी ललिता के अवतार हैं, और रामानंद राय ललिता, अर्जुनिया गोपी और अर्जुन पांडव ये तीनों के अवतार हैं। गौर गणदेश दीपिका के अनुसार लिखा गया है। अभी हम ललिता देवी को प्रणाम करेंगे एक मंत्र बोलकर। हाँ, गौरोचन रुचि मनोहर कांति देहम मयूर पुच्छ तुलिता छवि चारुचेलम राधे तव प्रिय सखिम च गुरु सखिनाम। मतलब वो उनकी सखी भी है और गुरु सखी भी है। तांबूल भक्ति ललितम ललिताम नमामि, तांबूल भक्ति ललितम ललिताम नमामि। आपका वर्ण जो है गौरवचंद की तरह है, आप वस्त्र पहनती हैं तो मयूर पुच्छ मोर पंख का वस्त्र पहनती है, इसलिए हमारे मंदिर में ललिता षष्ठी के अंदर सब मोर पंख का श्रृंगार होता है। राधा रानी की सखी ललिता है, उनकी गुरु भी ललिता है। और एक बात बताना भूल गया मैं, तांबूल जो होता है ना, गोविंद बिड़ा जो होता है, वो गोविंद बिड़ा भगवान को भोजन करने के बाद देते हैं, वो सेवा ललिता जी की प्रधान सेवा है, ललिता जी भी का तांबूल भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। दैवी गुणे सललितम ललिताम नमामि। एक ललिता अष्टक भी है, जो ललिता अष्टक में ललिता जी का वर्णन है। और एक बात है उनकी सेवा का कि जब भी राधा रानी, एनीवे नोबडी डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ललिता देवी जिस जिस लीला में राधा कृष्ण एकत्र होते हैं, और कभी कभी बहुत नाचते हैं, कभी कभी बहुत झगड़ा भी करते हैं, कभी कभी बहुत भाग भाग के आते हैं, तो जब भी उन दोनों के कपाल पर पसीना आता है, भाल प्रदेश पर घर्म बिंदु आते हैं, तो ललिता जो है बड़ी तत्परता से उनके पसीना पोंछती है। ये उनकी विशेष सेवा है। राधा मुकुंद पद संभव घर्म बिंदु। जब भी राधा कृष्ण के भाल प्रदेश पर घर्म बिंदु प्रकट होते हैं तो ललिता देवी तुरंत उसको पहुंच देती है। जब भी राधा रानी को कृष्ण भगवान बहुत प्रभावित कर देते हैं अपने आतंक से, तो राधा रानी बहुत सहम ही जाती है, बहुत बहुत डर जाती है कभी कभी, तो ललिता देवी उस समय जाकर राधा रानी का उत्साह बढ़ाती है। तुम क्यों डरती हो, मैं हूं तुम्हारे साथ में, डोंट वरी, गो अहेड, आई एम देयर विद यू। जब ललिता मिलती है तो राधा रानी को वो बहुत हौसला देती है, और ऐसे ऐसे काम करती है कि राधा रानी के और कृष्ण के मिलन की लीलाओं में अनुकूल ऐसे व्यवहार करती है। उनकी एक विशेष ललिता देवी का हमारे लिए क्या गुण है कि ललिता देवी जो भी व्यक्ति थोड़ी बहुत भी भगवान के और राधा रानी के प्रति प्रेम और भक्ति करने का इच्छा प्रकट करती है, उनको वो तुरंत आश्रय देती है। ललिता देवी की हमारे लिए विशेष, हमारे संबंध में विशेष बात है। एनीवेयर ऑन द रोड, एनीवेयर एनी प्लेस, एनीबडी एक्सप्रेसेस अ लिटिल डिजायर टू सर्व राधा एंड कृष्णा, शी इमीडिएटली गिव शेल्टर टू दैट पर्सन। और केवल वही उनका काम खत्म नहीं होता है, वो व्यक्ति को पूरा तरह तैयार करती है, साधना में गाइड करती है, कंप्लीटली तैयार करके शुद्ध करके राधा रानी के हाथों में उनको अर्पण करती है, फिर राधा रानी उसको कृष्ण को अर्पण करती है। उसी भाव में स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी है, सारे अनर्थों से वो जीव को मुक्त करा देती है और राधा रानी का आश्रय प्राप्त कराती है। शी अपीयर्स मैडेंड विद द लीडरशिप ऑफ द गोपीज, बिकम्स वेरी अग्रेसिव एंड गोज टू देम एनी एक्सटेंड टू प्लीज राधा एंड कृष्णा। राधा कृष्ण के प्रति उनका सुरक्षा भाव भी है, बड़े ही तेज स्वभाव से उनकी रक्षा करती है। कभी कभी राधा रानी को डांटती है, कभी कभी कृष्ण को डांटती है। उनका विशेष डांटने का एक कारण होता है, राधा रानी डर जाती है तो वो उसका स्वाभिमान जगाने के लिए उसको डांटती रहती है, और कभी कभी कृष्ण को डांटती है, राधा रानी का महात्म्य उसको समझाती है कृष्ण भगवान को, और राधा रानी का प्रेम तुम्हारे प्रति कितना महान है उसका भी वर्णन वो कृष्ण को करती है। तो इस देह कुंड में पहले राधा और कृष्ण का मिलन हुआ है ललिता के साथ में, सब में उन्होंने स्नान किया है और उसके बाद में उन्होंने अपने श्रृंगारों का दान किया है उस समय आनंद में। लेकिन जब कृष्ण मथुरा चले गए तो सब विरह में ललिता देवी के नेतृत्व में सब सखियां देवकुंड के पास में आई थी और अपना सब कुछ उन्होंने इस कुंड में निछावर कर दिया। तो देवकुंड बहुत उत्कट जगह है और देवकुंड में हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी हमारा है, जो हम सोचते हैं हमारा है, वो सब कृष्ण का है और वो कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो कृष्ण को अर्पण करने की है वो क्या है, वो हमारा जो ममत्व है, हमारा जो कंट्रोलिंग नेचर है ना, कि आई एम द लॉर्ड वॉट एवर आई सर्वे, जो भी मेरा है, जो भी मैं जहाँ भी रहता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ, सब मेरा है। ये भाव जो है, अहम भाव और ममता भाव, ये दोनों भाव हमारा मूल रोग है और वो यहाँ पर हमको त्याग करना चाहिए ताकि कृष्ण हमारे हो जाए। अभी ललिता देवी का और अभी यहाँ के थोड़ा जगह का वर्णन करते हैं। आपने देखा, आप हम लोग अभी रोहिणी और बलराम जी के मंदिर में गए थे। आप सोचते होंगे कि यहाँ पर क्या उसका संबंध है, हाउ दे आर हियर। इसका रहस्य यह है कि रेवती जी और ललिता देवी बहुत फ्रेंड्स थे एक दूसरे के। तो जब रेवती देवी का विवाह कृष्ण बलराम जी से हुआ तो रेवती देवी अपने पति को लेकर अपने सहेली को मिलने के लिए ललिता के गांव में आई थी, उच्च ग्राम में, और यहाँ पर कुछ दिन निवास किया था, इसलिए उनका सुंदर मंदिर यहाँ पर विराजमान है। ये उनके प्रेम और मित्रता का एक प्रतीक है। बलराम जी स्वयं यहाँ पर निवास करने के लिए आए थे। और ये जो हम लोग बैठे हैं इसके यहाँ देखेंगे आप थोड़ी देर के बाद, देखें आप सब दर्शन करेंगे तो उधर एक कुआं है, उसका नाम है त्रिवेणी कूप। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये नारायण भट्ट जी गोस्वामी महाराज की समाधि है। नारायण भट्ट जी गोस्वामी महाराज जो है वो नारद मुनि के अवतार हैं। आज से करीब 400 साल के आसपास पहले उनका जन्म हुआ था इस गांव में, इसी गांव में हुआ था। और नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने श्रीजी महारानी के जो विग्रह हैं उसको प्रकट किए हैं। ये विग्रह जो है लाडली लाल के, ये वज्रनाभ ने भगवान के अंतर्दान होने के तुरंत बाद स्थापित किए थे और भगवान की इच्छा से कुछ समय बाद वे लुप्त हो गए। तो वो 400 साल पहले जब इनका अवतार हुआ तो इनके स्वप्न में राधा रानी ने दर्शन दिया और कहा कि मैं इस जगह पर पत्थर के अंदर हूँ, मुझे निकाल कर स्थापन कर लो। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने फिर राधा रानी के विग्रह, जो जहाँ के ब्रह्मा जी की मूर्ति है वहाँ के पास में उनके चरण चिन्ह हैं, वहीं से इन मूर्तियों को प्रकट किया था और दोबारा स्थापन किया था। और बड़े बड़े धनी लोगों ने उसका जीर्णोद्धार किया मंदिर का उसके बाद में। तो वही नारायण भट्ट गोस्वामी ने ये जो रेवती बलराम जी की विग्रह यहाँ पर स्थापन किए गए, ये भी वज्रनाभ ने स्थापन किए थे, ये भी लुप्त हो गए। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने इस मंदिर के पीछे एक झाड़ी है विचित्र प्रकार की, उसका नाम है हींस की झाड़ी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वैसे, बहुत ट्विस्टेड उसके शाखाएँ हैं और बड़े छोटे छोटे पत्ते हैं उसके अंदर। बहुत पहले हमने देखा था तो बहुत गहरा जंगल था उसी झाड़ी का। तो उस झाड़ी के बीच में से नारायण भट्ट गोस्वामी ने रेवती बलराम के विग्रह को प्रकट किया था। तो ये यहाँ पर है। फिर यहाँ पर जो त्रिवेणी कूप है उसका लीला ऐसा है कि नारायण भट्ट गोस्वामी ये ब्रज के आधुनिक जो कल्चर है इसका पूरा पुनर्निर्माण नारायण भट्ट गोस्वामी ने किया है। खास करके जो रासलीला का जो यहाँ की प्रथा है, जहाँ पर हर समय किसी उत्सव के रूप में 7-7 दिन की लीला चलती है, केवल रास से चलता है। रासलीला का मतलब है हर लीला को नाटक रूप में प्रस्तुत करते हो, जैसे हमारे राधा गोपीनाथ में हर साल में नाट्योत्सव होता है, उसको भी रासलीला कह सकते हैं। तो बड़ी बड़ी फेमस मंडलियाँ हुआ करती थी, अभी तो सब एक एक नष्ट हो रहा है, लेकिन ब्रज का ये विशेष कल्चर था। जगह जगह पर नित्य रूप में कहीं ना कहीं 8-10 दिन की लीलाएँ, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएँ, एक एक नाटिका 8-8 घंटे की हुआ करती थी। यहाँ पर उद्धव जी की लीला जो है ना, जो उद्धव जी आए थे, वो उस समय 8 दिन हर रोज 8 घंटे चला करती थी। जस्ट इमेजिन, 8 आवर्स पर डे फॉर 8 डेज। ऐसे हमारे गोस्वामी जी बताते हैं नंदगांव के, वो तो अभी 70 साल के हो गए होंगे, तो अभी से केवल उनके बचपन की कहानी बता रहे हो। इधर प्रेम सरोवर के पास में गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को 8-8, 10-10 दिन 6-6 घंटे रोज करते थे, जो बचपन में आकर ब्रजवासी बालक उसको देखा करते थे। तो ये जो रास लीला का कल्चर जो है ब्रज का, ये नारायण भट्ट गोस्वामी ने पुनर्स्थापित किया। और ब्रज के जो रिवाज हैं बहुत सारे, जो ब्रज को ब्रज बनाते हैं, ब्रज की खासियत को प्रकट करते हैं, वो सारे रिवाज उन्होंने यहाँ पर स्थापन किए। साथ साथ श्री जी महारानी के मंदिर की पूजा अर्चा का भी स्टैंडर्ड स्थापन किया। यहाँ पर जो मंदिर आप गए ना अशोक पर्वत पर, अशोक पर्वत यानी अशोक महागोप का घर है, वो ललिता देवी का जन्म वहाँ पर हुआ था, तो वहाँ पर भी के विग्रह जो है वो नारायण भट्ट गोस्वामी ने प्रकट किए हैं। जो शिला आपने देखी ना वहाँ पर कृष्ण ललिता और राधा रानी उसमें दिख रहे हैं, वो शिला भी उनके द्वारा प्रकट की गई है। इस तरह से ब्रज के बहुत प्रमुख प्रमुख विग्रहों को और स्थानों को, खास करके श्री जी के विग्रह को उन्होंने प्रकट किया है। तो बड़े महात्मा थे, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। उनका ग्रंथ जो है आज भी ब्रज भक्ति विलास उनका ग्रंथ है, कई सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने। वो ब्रज के जैसे हमारे छह गोस्वामी ने जो काम किया है वो वैसा ही काम नारायण भट्ट गोस्वामी ने भी किया है। ब्रज के विग्रहों को प्रकट करना, ब्रज के स्थानों को प्रकट करना, ब्रज के विग्रहों की पूजा अर्चा स्थापित करना और ब्रज के इतिहास को पुनर्प्रकाशित करना। तो ब्रज भक्ति विलास में जितने भी जगहों का उन्होंने वर्णन किया है वो प्रमाण माना जाता है शास्त्र के अंदर। तो ये महात्मा यहाँ पर निवास कर रहे थे, तो ब्रजवासियों ने एक बार उनको बताया कि हमको त्रिवेणी बहुत दूर है यहाँ से, हमको सबको त्रिवेणी में स्नान करने की इच्छा है लेकिन हम इतना दूर जा नहीं पाएंगे, तो क्यों ना महाराज आप हमारे लिए त्रिवेणी को यहीं प्रकट करो। तो ब्रजवासियों की इच्छा के लिए नारायण भट्ट गोस्वामी ने अपनी शक्ति से गंगा जमुना सरस्वती नदियों को उनके सामने प्रकट किया। इसी गांव में उनकी आंखों के सामने ये तीन नदियां बहने लगी और एक जगह एकत्र हो गई, तो क्या बन गया? त्रिवेणी संगम प्रयाग। और वो तीनों नदियां एकत्र होकर एक कुएं में चली गई, वो कुआं है वो त्रिवेणी कूप। इसलिए ब्रज में सब कुछ स्थान प्रकट हो गए हैं, सब तीर्थों ने और पर्वतों ने और नदियों ने और महान वनों ने जितने भी तीर्थ स्थान विश्व में प्रकट हैं, स्वर्ग लोक में है, पाताल में जहां पर भी है, वो सब जगह जितने भी तीर्थ हैं वो सब ब्रज में प्रकट हो गए हैं। आदि बद्री में बद्रीनाथ प्रकट हो गए हैं, वहां पर नंद बाबा और सुधा माई ने ये मन्नत मांगी थी कि जब हमको बालक होगा तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे, तो वो समय आ गया, बोले हम जा रहे हैं, तो कन्हैया ने बोला नहीं 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 कोई जाने की जरूरत नहीं, मैं उनको यहीं बुला लेता हूँ, आप लोग आग बंद करो। ये काम्य मन में तब लीला कर रहे थे, तो काम्य मन में आग खोलते ही बद्रीनाथ केदारनाथ और जमुनोत्री गंगोत्री प्रकट हो गया, हर की पेड़ी सब कुछ है उधर, सब लोगों ने बड़े प्रेम से स्नान किया, तो वही विराजमान है। फिर वो जमुनोत्री केदारनाथ भी वहाँ पर है, बद्रीनाथ भी, आदि बद्री आदि केदार है, काम्य वन में सेतु बंध है, रामेश्वर है, श्रीलंका प्रकट किया है, पूरे सारे 68,000 कुंड को उन्होंने विमल कुंड में प्रकट किया है, राधा कुंड श्याम कुंड में प्रकट किया है, कोशी को कोशी में द्वारका को प्रकट किया है, गोमती नदी और सागर को प्रकट किया है। वैसे सारे तीर्थों ने यहाँ पर आश्रय लिया है और खास करके सारे तीर्थ जो है जैसे पावन सरोवर में अभी कुछ डिवोटीज गए हैं, वहाँ स्वयं त्रिवेणी कूप के जो व्यक्ति हैं मतलब भक्त जो हैं स्वयं देवता जो हैं त्रिवेणी कूप स्वयं आकर पावन सरोवर में स्नान करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, क्या बोलकर कि साल भर सब लोग हमारे अंदर स्नान करते हैं और पाप छोड़ते हैं हमारे अंदर और हम दूषित हो जाते हैं एकदम काले हो जाते हैं, तो अक्षय तृतीया को एक दिन छुट्टी लेकर नंद सरोवर में स्नान करने आते हैं और खुद का पूरा तेज जो है प्राप्त करके सब पापों को नष्ट करके फिर अपनी सेवा करने के लिए अपनी जगह चले जाते हैं, सारी नदियाँ और त्रिवेणी संगम प्रयागराज। तो इस तरह से ब्रज जो है वो ब्रज में आने के बाद में और किसी तीर्थ को जाने की जरूरत नहीं है। ये साथ साथ ये भी सत्य है कि ब्रज वृंदावन धाम मायापुर धाम और जगन्नाथपुरी धाम उसमें भी फर्क नहीं कर भी करना चाहिए, वो तीनों समान है एक रूप है। तो ये यहाँ पर नारायण भट्ट गोस्वामी की कृपा से त्रिवेणी कूप प्रकट है, साक्षात त्रिवेणी प्रकट है। और जिस दिन कुंभ मेला होता है, अर्धकुंभ महाकुंभ पूर्ण कुंभ जो भी होता है उस दिन उन दिनों में यहाँ पर उस क्या कहते हैं उसको कूप में बाढ़ आती है, तो वाटर गेट्स ओवरवेल्म कम्स आउट एंड फ्लड्स एवरीथिंग, तो बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। वो मेला लग के यहाँ पर सब ब्रजवासी सब लोग यहाँ पर आते हैं और उसमें स्नान करते हैं। अभी एक रहस्य की बात समझ लो आप कि जब आप किसी भी तीर्थ में जाओगे तो प्रमुख उसका लाभ क्या है, वहां जाने से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जब वो तीर्थ जब ब्रज में प्रकट होता है तो न केवल पाप नष्ट होते हैं पुण्य भी नष्ट होता है। अच्छा लगता है आपको? पुण्य भी नष्ट होता है और साथ साथ श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति भी हो जाती है, दैट इज द बेनिफिट हियर। पुण्य नष्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि पुण्य जो है वो पाप से भी खराब है, क्योंकि पुण्य जो है उसका जब हम फल भोगते हैं तो कृष्ण को बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। पाप का फल जब भोगते हैं तो बार बार याद करने का मौका मिलता है, अरे कृष्णा किधर हो, दर्द हो रहा है इधर, इधर कैंसर का दर्द हो रहा है, इधर प्रसूति का दर्द हो रहा है, इधर सर में दर्द हो रहा है, इधर ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया। तो पाप का फल जब भोगते हैं तो दुख भोगते हैं, और दुख भोगते समय कृष्ण को याद करना बड़ा आसान होता है। इसलिए दुख जो है, पाप जो है, वो पुण्य से भी अच्छा माना गया है और पुण्य को पाप से खराब माना गया है। हम लोग पुण्य इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है, जब पुण्य का फल मिलता है तो हम लोग बड़ी आसानी से भगवान को भूल जाते हैं। तो ब्रज में जो भी इतने भी स्थान है वो पाप पुण्य को नष्ट करते ही हैं लेकिन साथ में कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, वो शायद जगह जगह आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। तो ये त्रिवेणी का ये महात्म्य है, यहाँ पर इसका स्मरण करने से भी आपको त्रिवेणी स्नान करने का लाभ मिलेगा और इसका स्मरण करने से आपको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके आगे सखीगिरी है उस तरफ, हाँ जैसे वो चार पहाड़ी बरसाने की है वैसे सखीगिरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। सखीगिरी ये लीलाओं का खजाना है पूरा। वो सखीगिरी क्यों कहा गया, क्योंकि ललितागिरी का वो पहाड़ है, ललिता जी का, सखी जी का वो पहाड़ है सखीगिरी। उसमें कई लीलाएं हुई हैं, उसमें प्रमुख लीला जो है वो भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के दिन, जब राजा, जब ललिता देवी का उम्र 14 साल का था, उस समय अशोक जी और शारदा जी जाकर वृषभानु और कीर्तिमया से मिलते हैं और राधा रानी के निर्देश के अनुसार ये विचार करते हैं कि इनका विवाह कृष्ण से होना चाहिए। फिर ये चारों मिलकर जाते हैं नंद बाबा यशोदा के पास और अपनी योजना बताते हैं। फिर वृषभानु महाराज, कीर्ति मैया, अशोक जी और शारदा जी और नंद महाराज यशोदा देवी, ये सब मिलकर ललिता देवी का कृष्ण के साथ में विवाह का प्लानिंग करते हैं और राधा रानी स्वयं, क्या कहते हैं उसको, पुड़ाकार बोलते हैं ना मराठी में, मतलब स्वयं उसका नेतृत्व लेकर, अपने नेतृत्व में पूरी योजना बनाकर, जबकि ललिता देवी सभी लीलाओं का योजना करना थी, लेकिन ललिता देवी के साथ ऊपर राधा रानी का कितना प्रेम है उसके कारण ललिता देवी का विवाह स्वयं राधा रानी अपने निर्देश में आयोजित करती है और वो उस पहाड़ पर ललिता देवी का विवाह राधा रानी अपने हाथों से कृष्ण से करती है। तो इसमें से हमको, प्रभु जी पूछ रहे थे मुझे, क्या हमको सीखना है इसके अंदर? सीखना यही है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमेशा दूसरों को बांटना चाहिए। राधा रानी ने बोले कृष्ण मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी से उसको शादी नहीं करने दूंगी। राधा रानी स्वयं अपने हाथों से ललिता देवी का विवाह करती है यहाँ पर, और न केवल ललिता देवी करती है, उस पहाड़ पर राधा रानी ने अपने सभी सखियों का विवाह कृष्ण से किया हुआ है। फिर उधर झूला है, उस झूला में राधा रानी ललिता को अपने हाथों से बिठाकर कृष्ण के साथ झुलाती है, तो झूला लीला भी वहां पर होती है। एक बार वहां पर ललिता जी अपने गाय का दूध निकाल रही थी, तब कृष्ण आते वहां से, तो कृष्ण भगवान आते ही ललिता देवी बछड़े को अपने पास लेती है, उसको पकड़ के बैठती है और ललिता देवी की गाय का दूध कृष्ण भगवान अपने हाथ से निकालते हैं और फिर ललिता देवी उस दूध को कृष्ण भगवान और सखाओं को पिलाती है। तो वहाँ पर पर्वत पर दूध कटोरा बने हुए हैं, कई 500 कप्स बने हैं पत्थर के अंदर, जिसमें ललिता देवी ने कृष्ण भगवान को और सब सखाओं को दूध पिलाया है, दूध दही छाछ सब कुछ पिलाया है। वो पर्वत जो है उसमें कई प्रकार के लीला है, एक वहाँ पर खिसली शिला है, शायद उसका श्लोक होगा यहाँ पर नहीं है, क्या बात है। तो वो शिला में राधा रानी और कृष्ण भगवान फिसलते हैं, ओके। वैसे लीला वो कामेवन में भी है, खिसलनी शिला, वहाँ पर कृष्ण और सखा झूल फिसलते हैं, लेकिन यहाँ पर सखियाँ और कृष्ण भगवान फिसलते हैं। तो वो क्या करते हैं, पैर पर आलता मेहंदी और सबका श्रृंगार करके राधा रानी बैठती है, कृष्ण भगवान भी अपने पैरों का श्रृंगार करके बैठते हैं और दोनों को सखियाँ जो हैं धक्का देती है पीछे से। फिर वो नीचे जाके ऐसे फिसलते हैं और एक शिला पर जाकर उनका पैर रुक जाता है, वहाँ पर वो शिला समाप्त होती है। तो जैसे ही वो उनके पैरों का स्पर्श उन शिलाओं को होता है, तो क्या इनकी शिलाओं की विशेषता है, कल महाराज ने बताया ना, जैसे ही कृष्ण भगवान बलराम जी सखियाँ गिरिराज गोवर्धन पे आती है तो क्या होता है, दे बिकम सॉफ्ट लाइक बटर। वो भाव है वो सखा, वो पत्थर का, जो जो व्यक्ति पत्थर बने हुए हैं सबका भाव यह है कि कृष्ण भगवान राधा रानी सखाओं के चरणों में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उल्टा आनंद प्राप्त होना चाहिए, मुलायम शीतल ऐसा अनुभव होना चाहिए। तो जैसे ये लीला करते हैं तो वो जो मुलायम हो गए हुए पत्थर है उस पर इनके पैरों के निशान बन जाते हैं। तो इसलिए वैसे अनेक मेहंदी शिलाएं वहाँ पर बनी हुई हैं, कई जगह पर झूले हुए हैं, चले हुए हैं, तो उनके मेहंदी के निशान उन शिलाओं में। एक और विचित्र प्रकार की मेहंदी शिलाएं भी यहाँ पर हैं। कैसी हैं वो सब अभी दर्शन नहीं होता है क्योंकि अभी वो समय के साथ सब नष्ट होते जा रहा है। राधा रानी एक बार किसी कारण रूठ गई थी कृष्ण से, तब उनका हाथों में सखी लोग मेहंदी लगा रहे थे, तो कोई ऐसी घटना होती है कि वो उनको मान होता है तो वो हाथ में लगाई हुई गीली मेहंदी निकल लेकर चले जाती और सखी गिरी में आपका बैठती है, और सखी गिरी बैठकर ऐसे गुस्से से जो है ना दोनों हाथ ऐसे ऐसे कहते हैं कि पुराने जमाने में जब लड़कियां गुस्सा होती थी तो जब कहीं जाके बैठ के अपने हाथ ऐसे जमीन पर मलती थी ऐसे, तो जैसे वो हाथ अपने मलती है तो सारे उनके हाथों की मेहंदी जो है वो पत्थर पे पैदा होती है। तो ऐसे प्रेम से भी बने हुए चिन्ह हैं मेहंदी के, और वो मान लीला में बने हुए भी चिन्ह वहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे बहुत अद्भुत छत्रियाँ और बहुत सारे दर्शन वहाँ पर हैं। तो ये ललिता के धाम का वर्णन है। अभी मधुमंगल और ललिता के बीच में कुसुमवन में एक संवाद है। तो ललिता देवी पूछती है, राधा रानी वृंदावनेश्वरी है, तुम्हारा कृष्ण कौन है? तो मधुमंगल कहता है, वृंदावन कृष्णवन, वेदों के अनुसार वृंदावन कृष्ण से बना हुआ है। तो ललिता कहते हैं, नहीं, वृंदावन का मतलब है जब कृष्ण का वन होता है वो तो काला हो गया, वो डार्क फॉरेस्ट में कोई मजा नहीं है। वास्तव में ललिता कहती है कि वृंदावन राधिका वन है, ये राधिका ने बनाया हुआ है। तो मधुमंगल कहता है, नहीं, वेदों में कहा गया है तो ये तो पुराने काल में कृष्ण ने बनाया हुआ है। हाउ कैन यू से कि पुराण काल के पहले राधा रानी ने उसको बनाया है? तो ललिता देवी कहती है कि जब वेद बहुत ही असंबद्ध थे, ऐसा है ना कि वेदों में कृष्ण का डायरेक्ट गौरव वर्णन नहीं किया गया है, बहुत इनडायरेक्टली नेति नेति के रूप में वर्णन किया गया है। तो वेद जब बहुत ही अनक्लियर थे तो पुराणों ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, और पुराण में लिखा है, पुराण जो अभी ज़्यादा अथॉरिटी माने जाते हैं क्योंकि पुराणों ने सब स्पष्ट कर दिया पूरा, और पुराने के अनुसार वृंदावन जो है राधिका वन है। तो मधुमंगल तुरंत निकल जाता है, तो क्या बोलेगा वो? तो कृष्ण भगवान बाद में बोलते हैं, मुझे निश्चित रूप से पता है कि ये मेरा वन है क्योंकि मैं वृंदा देवी का पति हूँ और वृंदावन जो है वो वृंदा का है, इसलिए वो मेरा हो गया। तो अभी समझा ना कृष्ण भगवान चतुर कितने हैं। मधुमंगल तो हार गए लेकिन कृष्ण भगवान बड़े चतुर हैं, वो वृंदा देवी को प्रूफ बता के बताते हैं कि मेरा विवाह हुआ है ना इसके साथ में, वृंदा देवी के साथ में हुआ है बिल्कुल, और वृंदावन किसका है? वृंदा देवी का है, तो मैं उसका पति हो गया, तो मैं उसका मालिक हो गया। तो राधा रानी ललिता क्या करती है, वृंदा देवी को लेके आती है, हाँ, और कहती है कि बताओ वृंदा देवी तुम्हारा क्या कहना है। तो वृंदा देवी कहती है, मैं ऐसे मूर्ख व्यक्ति के साथ कभी विवाह नहीं कर सकती, I would never marry such a rascal। और ये सब क्या था? कृष्ण का स्वप्न था, कृष्ण स्वप्न में सब देख रहे हैं, और जैसे ही वृंदा देवी ऐसे बोलती है तुरंत स्वप्न से जग जाते वो कहते ये तो सब झूठ है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, वृंदा देवी ने ऐसे तो कहा नहीं था। एनीवेज, तो इस तरह से हम ललिता देवी के सुंदर वन में आए हैं। तो ललिता देवी से हमको क्या सीखना है? ललिता देवी बहुत करुणामय है, राधा रानी जैसे ही है वो, और उनका बहुत ही सुरक्षा भाव है राधा रानी की ओर। तो हम लोगों को भी भक्तों के प्रति ऐसा सुरक्षा भाव होना चाहिए। हमारा क्रोध जो है वो जब भक्तों का अपराध होता है तो उनको बचाने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। कहीं पर भी भक्तों के ऊपर कोई आतंक, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो रही है तो हमको चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, उनकी रक्षा में आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हमारी जान भी चले जाए, बट वी शुड प्रोटेक्ट डिवोटीज। तो इस प्रकार से राधा रानी के अनोखे दिव्य लीला के अंदर वो राधा रानी की हमेशा रक्षा करती रहती है। तो हम सब लोग ललिता देवी को प्रणाम करते हैं क्योंकि ललिता देवी का हम सबको ज़रूरत है। ललिता देवी सभी जो मुमुक्षु जीव हैं जो भगवान की सेवा में आना चाहते हैं उन सबको सहारा देती है, आश्रय देती है, सबको तैयार करती है, ट्रेनिंग देती है, और बहुत सुंदर बनाकर भगवान के अर्पण करने योग्य बनाकर राधा रानी के हाथों में अर्पण कर देती हैं। तो हमारे लिए ललिता देवी बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग यहाँ पर हाथ जोड़कर ललिता देवी को प्रणाम कीजिए, साथ साथ नारायण भट्ट गोस्वामी को भी प्रणाम कीजिए, क्योंकि उनकी दया से आज आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पर वो उनकी दया से प्रकट है, सब कुछ उनकी दया से प्रकट है। उनको आप प्रणाम कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ब्रज में रहते हुए हमको हमेशा कृतज्ञ भाव में रहना चाहिए, क्योंकि ये रज की प्राप्ति जो देवताओं को भी नहीं होती, महात्माओं को भी नहीं होती है, हम लोगों को यहाँ पर रहने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ रज में बैठे हुए हैं, हर एक कण में वो रहस्य छुपा हुआ है जिसमें हम राधा कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे अनेक वृक्ष है, देखो आप पांचों इंद्रियों से हम ब्रज को ग्रहण कर सकते हैं। ये सारे वृक्ष जो है कल्प वृक्ष है, ये भक्ति देने वाले हैं। या तो ये राधा रानी के स्वयं स्वरूप हैं, या तो ये ऋषि, महान ऋषि जो है, जैसे पांडव हैं, जैसे स्वयं गोपियां भी यहाँ पर वृक्ष बनकर तपस्या करती हैं, और स्वयं ये गोलोक के कल्प वृक्ष भी हैं। अनेक प्रकार के इनका महत्व है, यही ब्रज का गौरव संभाले रखे हुए हैं। कैसे? क्योंकि वृक्ष के अंदर एक पावर होती है कि जो भी हो रहा है उनके आसपास उसके भाव को ये वृक्ष ग्रहण कर लेते हैं, और गलत हो रहा है तो वो भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो ऐसी स्थिति है। तो खास करके लीला स्थली में जितने भी पेड़ हैं, जितने भी वृक्ष हैं, वो उनके इर्द गिर्द जो भी लीलाएं हो रही है उनका भाव ग्रहण करते हैं, और जो भी उसके बाद में उस स्थिति में उस जगह पर दर्शन करने आते हैं उन लोगों को वो भाव का भेंट देते हैं। दे गिफ्ट दैट भाव वट दे हैव एब्सॉर्ब्ड टू ऑल दोज हु आर विजिटर्स लाइक ऑल ऑफ यू। इसलिए जब हम धाम में आते हैं तो इन सब वृक्षों को गले मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा काम केवल यहाँ पर आकर कथा सुनना नहीं है। हमारा काम यह है कि जब हम किसी धाम में आते हैं तो उस धाम का जो भाव है, वहाँ पर जो किरदार है, व्यक्तित्व है, उनका जो कैरेक्टर है, उसको उसका एक अंश ग्रहण करने का हमको प्रयास करना चाहिए, तब हमारी धाम की यात्रा सफल होती है। इसलिए हम लोग पेड़ को हमेशा देखते रहते हैं और हमेशा गले लगा कर उनसे प्रार्थना करते रहते हैं कि आप हम पर कृपा करो, ताकि धाम में जो प्रेम और भक्ति का जो गहरा रहस्य यहाँ पर छुपा हुआ है वो हमें आप दे दो। तो इस तरह से एक है आचार्यगण जो जिनकी कृपा से प्रकट होता है, और दूसरा है पेड़ जिनके होने से ये सारा गौरव जो है बना रहता है, प्रकट होता है, हमारे तक पहुँचता है इनकी कृपा से, और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आप सब लोगों ने बड़े शांति से कथा का श्रवण किया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।